नमस्कार भारत, 21 मई दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बोले हसन रूहानी, वोटरों ने चुना दुनिया से संपर्क बढ़ाने का रास्ता। केरल में बलात्कार की कोशिश करने वाले शख्स पर हमला करने वाली महिला की मुख्यमंत्री ने की तारीफ, महिला संगठन भी बढ़ा रहे हैं हौसला। और यूपी के सहारनपुर में दलितों के लिए आवाज उठाने वाली भीम आर्मी आज करेगी दिल्ली में प्रदर्शन। संगठन के प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा,
समय बदल रहा है, 21वीं सदी, जैसे बाबा साहब ने कहा था ना कि मिस्टर गांधी 20वीं सदी आपकी और 21वीं हमारी, 21वीं सदी हमारी है।
होगी आईपीएल की भी बात, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पद के लिए दोबारा चुने जाने के बाद कहा है कि ईरान दुनिया से बेहतर संपर्क बनाएगा, लेकिन अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि ईरान सिर्फ अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोककर और इलाके में अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों के प्रति समर्थन को ख़त्म करके ही दुनिया से अपने संबंध बेहतर कर सकता है। वहीं फ्रांस ने राष्ट्रपति रूहानी से अपील की है कि वो अपने दूसरे कार्यकाल का इस्तेमाल मध्य पूर्व के संघर्षों को कूटनीतिक तरीके से हल करने के लिए करें। ईरान के दो करीबी सहयोगियों सीरिया और रूस ने रूहानी को जीत की मुबारकबाद दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब दौरे के पहले दिन दोनों देशों ने 350 अरब डॉलर के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को महान बताया है। सऊदी अरब के साथ हुए हथियार सौदे को अमेरिका ने अपना अब तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा कहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप का जोरदार स्वागत किया और दिन में उन्हें काफी वक्त दिया। सऊदी विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा है कि ट्रंप की ये यात्रा अमरीका और सऊदी अरब के रिश्तों और अरब इस्लामी दुनिया में एक नया अध्याय शुरू करेगी। राष्ट्रपति ट्रंप 40 मुस्लिम देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ट्रंप ने कहा, ये एक शानदार दिन था, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका और हमारे सैन्य क्षेत्र में होने वाला बड़ा निवेश बहुत बहुत खुश करने वाला है और मैं सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करता हूं। अमेरिका में होने वाले इस सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश का मतलब है नौकरियां ही नौकरियां। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने 2 साल के अंतराल में ही अमेरिका के 18 से 20 जासूसों को या तो मार दिया या फिर गिरफ्तार कर लिया, जिससे चीन में अमेरिकी जासूसी कार्यक्रम लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने अखबार को बताया है कि ये अमरीकी सुरक्षा में बीते दशकों का सबसे बड़ा खिलवाड़ था। कुछ का मानना है कि चीन ने CIA के गुप्त संदेशों के सिस्टम को हैक कर लिया था, जबकि अन्य का कहना है कि किसी अंदरूनी व्यक्ति ने ही 2010 में चीन को जासूसों के बारे में जानकारी दी थी। चीन में अमरीकी खुफिया सेवा CIA के जासूस 2011 से गायब होने शुरू हो गए थे। CIA ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की जांच को रोक देने के लिए कहा है। उनका कहना है कि उनके खिलाफ पेश किए गए सबूत फर्जी हैं। राष्ट्र के नाम टीवी पर दिए गए संदेश में टेमेर ने कहा कि उन पर आरोप लगाने वाली गुप्त रिकॉर्डिंग को कम से कम 50 बार एडिट किया गया है। यह रिकॉर्डिंग एक मीट पैकिंग कंपनी के मालिक ने की थी। वहीं कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि ये टेप सही है। इसी बीच ब्राज़ील के मुख्य अभियोजक ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका दायर कर कहा है कि ये जांच जारी रहनी चाहिए। ब्राज़ील में हजारों विपक्षी कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली की शक्तियां छीनने के प्रयास के 50वें दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये खबर वेनेजुएला की है। एक विपक्षी नेता के मुताबिक काराकास में 1.5 लाख से अधिक प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। उम्मीदों से भरा एक उदारवादी चेहरा एक ऐसे देश में मतदाताओं का भरोसा जीतने में कामयाब होता है, जहां उन्हें एक ऐसे रूढ़िवादी नेता से चुनौती मिल रही थी जो सर्वोच्च नेता के करीबी माने जाते हैं। नमस्कार भारत की शुरुआत में हम आज जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो है ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, जो 57% वोटों के साथ एक बार फिर राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरे नंबर पर रहे इब्राहिम रईसी को करीब 38% वोट मिले। जीत के बाद टेलीविजन के जरिए जब रूहानी अपने वोटरों से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि आपने उन लोगों की अपील को ठुकरा दिया जो हमें अतीत में ले जाना चाहते थे। हमारे देश ने दुनिया को साफ संदेश दिया है, उन्होंने दुनिया से संपर्क बनाने का रास्ता चुना है। हम दुनिया से दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन किसी तरह के असम्मान या धमकी को मंजूर नहीं करेंगे। रूहानी ने और क्या कहा और दुनिया ने उनकी जीत पर क्या प्रतिक्रिया दी है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा।
ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाले उदारवादी नेता और मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने पहले भाषण में कहा है कि ईरान के लोगों ने कट्टरपंथ को नकार दिया है। रूहानी ने कहा है कि उनकी जीत सुधार प्रक्रिया को रोकने की कोशिशों की हार है। सरकारी टीवी पर दिए अपने पहले भाषण में रूहानी ने कहा कि ईरान के लोगों ने दुनिया से और बेहतर संपर्क के लिए मतदान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया के साथ बातचीत का रास्ता चुन लिया है और ये रास्ता हिंसा और कट्टरपंथ से अलग है। रूहानी ने कहा,
मिल्लत बुजुर्ग ईरान फिरोज असली इन इंतखाबात शुमा मिल्लत बुजुर्ग हस्ती।
ईरान के लोगों, ये जीत आपकी वजह से हुई है। ये जीत इस्लाम की व्यवस्था और गणतंत्रवाद के लिए है। ये जीत आज़ादी के लिए है और हमारे राष्ट्र के अधिकार के लिए है। ये जीत शांति और दोस्ती के लिए है और हिंसा के खिलाफ है। वहीं सऊदी अरब आए अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से जब रूहानी की जीत पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति के लिए उनके पास एक लंबा मांग पत्र है। टिलरसन ने कहा,
What I would hope is that Rouhani now has a new term and that he used that term.
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि रूहानी के पास अब एक और कार्यकाल है और वो इसका इस्तेमाल ईरान के चरमपंथ के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए करें और हर उस चीज़ को ध्वस्त कर दें जिससे इस क्षेत्र को अशांत और अस्थिर करने वाली शक्तियों को मदद मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा करें। टिलरसन ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को भी रोक दे। हालांकि ईरान किसी भी तरह के चरमपंथ के सहयोग को नकारता रहा है और कहता रहा है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। इसी बीच यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी ने रूहानी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यूरोप इलाकाई शांति और बेहतर बातचीत के लिए काम करने के लिए तैयार है। 68 वर्षीय रूहानी एक उदारवादी और सुधारवादी नेता हैं और अब उनके सामने ईरान की बीमार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और क्षेत्र में ईरान का दबदबा कायम रखने की चुनौती है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। उदारवादी रूहानी की जीत के ईरान के लिए क्या मायने हैं, हमारे साथी संदीप सोनी ने पश्चिम एशिया मामलों के जानकार कमर आगा से यही सवाल किया।
भाई, मैं समझता हूं कि ये बहुत हिस्टोरिक विक्ट्री है और एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वहाँ पे जो कंजर्वेटिव रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है ये उसके लिए सेटबैक है। ईरानियन आम जनता ने तय कर लिया है कि वो मॉडरेशन पे ही कायम रहेंगे। और दूसरी चीज, एक और डिसीजन है वहाँ पे जो बहुत हिस्टोरिक डिसीजन भी कुछ वक्त पहले हुआ था जिसके तहत न्यूक्लियर डील दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ जो साइन हुई थी वो भी एक बहुत अहमियत है। तो ये उसकी भी जीत है। जो लोग इसके खिलाफ थे, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनकी एक बड़ी हार हुई है। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान का एक कौमी नजरिया इस बात का स्ट्रेटेजिक डिसीजन लगता है मुझे ने लिया है कि वो अब सभी देशों से अपने संबंध अच्छे रखेंगे जिसमें अमेरिका भी है।
कमर साहब, ये बताइए कि हसन रूहानी जो दूसरी बार ईरान के राष्ट्रपति जिनका बनना तय हो गया है चुनाव के नतीजे आने के बाद, तो ये हसन रूहानी किस शख्सियत के मालिक हैं, इनके बारे में कुछ बताइए।
देखिए ये लोग वहाँ के क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट के सब लोग हैं, और वहाँ का क्लरिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक बहुत कंजर्वेटिव है, जो उसका नजरिया धर्म को लेके बहुत कंजर्वेटिव है, कल्चरल मामलों के ऊपर बहुत कंप्रोमाइज करने पे तैयार नहीं है और बहुत सख्ती के साथ अमेरिका के खिलाफ अपनी नीतियों को प्रमोट कर रहा था। दूसरा ग्रुप ये है जो बहुत लिबरल है, वहाँ पे रिलीजियस ये सब मौलवी लोग हैं, दोनों रईसी भी मौलवी थे ये भी मौलवी है। मगर ईरान के अंदर जो मौलवियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो इस्लामिक रेवोल्यूशन से मुतासिर होकर आया था और जिसने जो मॉडर्न एजुकेशन पहले पढ़ रहा था, ये हसन रूहानी साहब अमेरिकन से पढ़े हुए भाई, अमेरिका में इन्होंने तालीम ली, अच्छी अंग्रेजी भी बोलते हैं, बाद में मौलवी बने हैं। पहले ये लोग मॉडर्न लिबरल बैकग्राउंड से आते थे, मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिलीज के लोग हैं। इनका मानना ये है कि आइसोलेशन में नहीं रहा जा सकता, वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, मगर अपने को इतना स्ट्रांग बना लेना चाहते हैं कि वो दोबारा ईरान इराक जैसी जंग ना होने पाए। अपनी लिमिट्स को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां तक वो कन्फ्रंटेशन कर सकते हैं पश्चिमी देशों से।
एक आखिरी सवाल वो ये, जिसका जवाब संक्षेप में जानना चाहेंगे, हसन रूहानी का दोबारा ईरान का राष्ट्रपति बनना, भारत ईरान संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो इसे कैसे देखते हैं आप?
मैं समझता हूँ कि बहुत आगे रिश्ते बढ़ेंगे। जो भारत को डर लगा रहता था, खतरे रहते थे कि नए सैंक्शन अमेरिका न लगा दे, मैं नहीं समझता कि अब कोई नए सैंक्शन अमेरिका लगाएगा। सैंक्शन भी विदड्रॉ करेंगे वो, और भारत के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा साबित होगा, भारत की कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब चाबहार पोर्ट का काम और तेजी से शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। वहाँ पे एक बार चाबहार पोर्ट बन जाएगा और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी चाबहार से, वो भी काम और मैं समझता हूँ जल्दी होगा अब। और साथ में जापान और साउथ कोरिया का भी इन्वेस्टमेंट भारत चाबहार में लाने की कोशिश कर रहा है, ये कंट्रीज भी राजी हो गई हैं, तो काफी इन्वेस्टमेंट भी चाबहार में भारत का आएगा। और चाबहार तकरीबन अब सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों से भी कनेक्टिविटी हो चुकी है, अब तक रशिया तक उसकी, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया जाने के लिए, हमको एक गेटवे मिल जाएगा सेंट्रल एशिया। तो ईरान का आने वाले समय में हमारा संबंध उनसे कई गुना अगले 4 साल में बनेगा।
4 साल के लिए नई उम्मीद है। कमर आगा से बात कर रहे थे संदीप सोनी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल रूहानी को क्या तोहफा दिया, तो आप रुक कर सकते हैं bbchindi.com का।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख भारत का करते हैं। भारतीय सेना के मुताबिक भारत प्रशासित कश्मीर के नौगाम सेक्टर में कल से जारी मुठभेड़ में 2 सैनिकों और 2 चरमपंथियों की मौत हो गई। ताजा अपडेट के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले स्थानीय पत्रकार माजिद जहांगीर से बात की।
जो हमारी सेना के अधिकारियों के साथ जो आखिरी बात हुई थी उसके अनुसार अभी तक नौगाम सेक्टर में जो है ऑपरेशन जारी है और सेना का सर्च ऑपरेशन भी रात से ही जारी है जब से ये भीड़ वहाँ पे शुरू हो गई थी, और इसमें अभी तक जो है 2 सेना के जवान मारे गए हैं और 2 चरमपंथी भी मारे गए हैं। और सेना का ये दावा है कि ये चरमपंथी जो है ये सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे और कश्मीर में अंदर दाखिल आने की कोशिश थी उनकी, और जिस कोशिश को सेना ने नाकाम बनाया और सेना के 2 जवान उनकी जान उसमें चली गई।
कश्मीर घाटी में आज बंद भी बुलाया गया है, उसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, प्रशासन ने आज कश्मीर बंद को देखते हुए श्रीनगर के तकरीबन 5 थानों के अंदर सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है और ये बंद अलगाववादियों ने बुलाया है। आज दरअसल मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के जो पिता जिनकी हत्या हुई थी 90s में, सजाद गनी लोन के पिता जो मंत्री भी हैं अभी पीडीपी और बीजेपी सरकार में, उनके पिता की हत्या भी हुई थी 90s में ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की, तो उन्हीं की जो एनिवर्सरीज है आज, डेथ एनिवर्सरीज हर साल वो मनाई जाती है एक पूरे हफ्ते को जिसको हफ्ते शहादत कहा जाता है, तो उसी को लेकर के आज 21 मई को दोनों ही नेताओं को 90s में जो है उनकी हत्या हो गई थी, अननोन लोगों ने उनकी हत्या की थी, तो उसको डेथ एनिवर्सरीज को के मौके पर आज अलगाववादियों ने पूरा कश्मीर बंद बुलाया है और ईदगाह चलने की भी उन्होंने लोगों से अपील की है। तो लेकिन प्रशासन ने ईदगाह के जो रास्ते हैं और जो इलाके हैं वहाँ, तो वहाँ आज रेस्ट्रिक्शन लगाने का रात को ही ऐलान किया था।
जानकारी दे रहे थे माजिद जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। भारत में महिला सुरक्षा को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? इस सवाल के बीच खबर आई है कि केरल में एक महिला ने बलात्कार का कथित प्रयास करने वाले एक व्यक्ति से बचने के लिए उस पर वार कर दिया। जाहिर है ये आत्मरक्षा के लिए था। केरल के मुख्यमंत्री ने इस महिला की तारीफ करते हुए इसे साहसिक कार्य बताया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं इमरान कुरैशी।
महिला ने पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में कहा है कि श्रीहरि उर्फ गणेश आनंद तीर्थपत उनके परिवार के धर्म गुरु थे और वो तब से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे जब वे 16 साल की थी। महिला ने पुलिस को कहा कि शनिवार तट के जब श्रीहरि ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की तो उन्होंने चाकू से उसका लिंग काट दिया। तिरुवनंतपुरम के पुलिस कमिश्नर सृजन कुमार ने बीबीसी को बताया, इस महिला के परिवार को स्वामी जी पर अंधविश्वास था। उसके पिता को लकवा हो गया था और स्वामी जी अक्सर उनके घर पूजा करने जाते थे। इस बार जब स्वामी जी ने महिला का यौन शोषण करने की कोशिश की तो महिला ने चाकू से स्वामी जी का लिंग काट दिया, लेकिन उसको फिक्र थी कि उसके परिवार के लोग उसकी बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो स्वामी जी है और उसको डर भी था कि स्वामी जी उसको जान से मार डालेगा। ये थे सृजन कुमार के शब्द। स्वामी जी को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल ने बयान में कहा कि ऑपरेशन के बाद स्वामी जी के लिंग को बचाया नहीं जा सका क्योंकि वो जिस्म से 90% कट चुका था। इस वाक्या के बाद अन्वेषी नाम की महिलाओं की अधिकार संगठन की अजीता ने कहा, ये एक निडर महिला है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये स्वामी जी को होना ही था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इसको एक उदाहरण के तौर से देखा जाए, लेकिन महिलाएं ऐसी ही प्रतिक्रिया देंगी। जब महिलाओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो और क्या करेंगे। ये लुटेरों को एक धमकी है कि महिलाएं शक्तिशाली बन रहे हैं। ये थे अजिता के शब्द। लेकिन इस मामले में दिलचस्प बात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बयान में आया। उन्होंने कहा, इसमें तो किसी को शक नहीं है कि ये एक बहुत ही निडर कार्य और मजबूत कदम है। ये थे पिनराई विजयन के शब्द। पुलिस ने स्वामी जी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया है और पॉक्सो के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी सवाल इतना ही है कि क्या इस वाकया से बलात्कारियों को थोड़ा डर आएगा या नहीं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों के समर्थन पर और उनके लिए प्रदर्शन करने की वजह से चर्चा और विवादों में आई भीम आर्मी आज दिल्ली में सड़कों पर होगी। भीम आर्मी के सदस्य जंतर मंतर पर सहारनपुर की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसमें कई अन्य संगठन भी शामिल होंगे। हमारे सहयोगी संदीप राय ने भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से बात की और सबसे पहले पूछा कि भीम आर्मी को लेकर प्रशासन का रुख सख्त क्यों हुआ है।
लोग यहाँ गाय के मरने पे डिबेट करते हैं, लोग वहाँ 56 घर जलने, 25 दुकानें जलने, 15 लोग अस्पताल जाए, उस पर डिबेट नहीं करना चाहते लोग। अगर प्रशासन जितनी मुस्तैदी पे से भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई कर रहा है, 37 लोगों को जेल में घेर दिया है, 300 अज्ञात मुकदमा है, मुझसे लेकर कई सारे लोगों को राशि की तैयारी की जा रही है, जो लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं उनको उठा के जेल में भेज दिया जा रहा है, तो एक तरह से जो दमन कार्रवाई हो रही है, अगर इसी इतनी तेजी से प्रशासन 5 तारीख को दंगा करने वाले, घर जलाने वाले लोगों को मारने वाले लोगों पर कार्रवाई करता तो ये सब चीजें नहीं होती। आक्रोश जो है पुलिस खुद पैदा करवा रही है, पुलिस जो है एक माहौल बना रही है। सरकार का एक आदेश आता है जो हमें भी कहीं ऐसा पता लगता है कि दलितों के जो युवा लड़के हैं जो कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उनको जेल में ठूस दिया जाए।
9 मई को प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसक वारदातें हुई, क्या भीम आर्मी के लोग इसमें शामिल थे?
मैं चाहता हूँ सीबीआई जांच हो या जुडिशियल जांच हो, उसमें पता लग जाएगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सब चीजें की, वो कौन लोग थे जो पुलिस के साथ मिलकर हमारे लोगों को पीट रहे थे। अब इस देश में वो सब चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि दलित जो है वो जागा हुआ है। अब इस देश में न्याय होगा और वो न्याय संविधान के दायरे में ही संवैधानिक रूप से हम लोग आंदोलन करके लेंगे।
आप किस तरह का सामाजिक बदलाव चाहते हैं?
समय बदल रहा है, 21वीं सदी, जैसे बाबा साहब ने कहा था ना कि मिस्टर गांधी 20वीं सदी आपकी और 21वीं हमारी, 21वीं सदी हमारी है। अंबेडकरवादी युग स्टार्ट हो चुका है। लोग ये कहते हैं कि कलयुग है और हम ये कहते हैं कि कलम युग है, और इस कलम की ताकत को लोगों को पहचान लेना चाहिए। कलम जो लिखेगा वही सच होगा। बाबा साहब का कलम चल रहा है और समय नजदीक है कि लोग अगर इस देश में चाहते हैं कि इस देश का माहौल सही बना रहे तो अपनी जो संकीर्ण मानसिकता उसे बदल लें।
अपनी मुहिम में आप किन लोगों को साथ लेकर चलने की सोच रहे हैं?
न्याय के लिए जिन लोगों पे, चाहे वो जाति के नाम पे या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम पे अन्याय हो रहा, तो उन्हें समझ आनी चाहिए कि उनका दोस्त और दुश्मन कौन है। और मैं चाहता भी हूँ कि बहुत जल्द लोग इसे समझ जाए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, इस देश से संविधान को खत्म कर दिया जाए और वो आरएसएस के लोग एक हिंदू संविधान जो है यहाँ लागू कर दें और उसके बाद जो है यहाँ की व्यवस्था बदल जाए, दलितों से उनके अधिकार छीन ले जाए, मुस्लिमों से ओबीसी से उनके अधिकार छीन ले जाए। इससे पहले ये बीजेपी और आरएसएस के लोग ये कर दें, हमें समझ जाना चाहिए कि गलत और सही क्या है और न्याय की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। एक बिना एकता के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती।
पुलिस का कहना है कि भीम आर्मी और नक्सलियों के बीच संबंधों की वो जांच करा रही है, इस पर आपको क्या कहना है?
हम लोग जो है अपनी इस कम्युनिटी के लिए संघर्ष करते हैं, हक की आवाज संविधान के दायरे में उठाते हैं और अगर संविधान के दायरे में भी हमें नक्सली कहा जाता है तो मुझे लगता है कि मुझे समझ आता है कि नक्सली कौन लोग हो सकते हैं, जो न्याय की बात करेगा वो नक्सली होता है। और अगर इसके लिए प्रशासन मुझे अपने हक की आवाज उठाने के लिए अपनी कम्युनिटी को मुझे नक्सली कहता तो मुझे कोई बुराई नहीं, मैं उनका ये तमगा भी स्वीकार करता हूँ।
भीम आर्मी के सदस्य आज दिल्ली में होंगे और दिल्ली से छपे अखबार आज क्या कह रहे हैं ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज पाशा
जी। आज के तो सभी अखबार कह रहे हैं ईवीएम हैक करके दिखाई है, पिछले कुछ चुनावों के बाद से ईवीएम पर बार बार शक जाहिर किया जाता रहा है और अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने चैलेंज दिया है पार्टी।
आम आदमी पार्टी ने 90 सेकंड मांगे थे और वो 4 घंटे का वक्त दिया गया
जी, 3 से 7 जून के बीच कोई भी पार्टी जो है इस ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर सकती है। इसके बाद इसके अलावा और कई खबरें आज अखबारों में हैं। एक खबर जो ध्यान खींच रही है वो है बेनामी संपत्तियों पर कसने लगा शिकंजा। एक और पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की तस्वीर है और दूसरी ओर मीसा भारती की खबर है दैनिक जागरण की। नई दुनिया का कहना है कि व्यापम परीक्षा होती है उसमें पिछले साल भी फर्जीवाड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की ये परीक्षा कई सालों से विवादित में रही है और इसमें बड़ा घोटाला होने की बातें सामने आती रही
जी। दिलनवाज एक खबर जो ध्यान खींचने वाली है, पाकिस्तान में फंडिंग के मामले में ANI के अलगाववादियों पर शिकंजा कस गया है, ANI ने जांच शुरू कर दी है, ये भी कई अखबारों ने इस खबर को लिया है
जी। NIA ने जो नईम खान है उनके घर पर छापा मारा है, ये आज का अखबार कह रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 16 साल जेल में रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र गुलजार अहमद वानी को धमाकों के आरोप से बरी कर दिया गया है। उनकी कहानी जो है अखबार ने प्रकाशित की है। 16 साल बहुत लंबा समय होता है किसी
बिल्कुल बहुत लंबा समय होता है और घड़ी बता रही है कि समीक्षा का समय भी यहीं तक है। शुक्रिया दिलनवाज
जी। बात सुने,
आज का दिन कैसा लग रहा है? अच्छे दिन।
मोदी सरकार के 3 साल, कौन कितना खुशहाल, कौन कितना बेहाल।
युवक के भविष्य के हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी इनका खरा नहीं उतरा है किसी भी सेक्टर में, चाहे एकेडमिक सेक्टर हो, चाहे आपका IT सेक्टर हो।
अच्छे दिन लाने के इरादे और विकास के वादे।
एक चीज है, उन्होंने PMO में एक डिसाइसिवनेस लाया है। पिछले 8-10 साल में ऐसा मालूम होता था कि वहाँ में कोई आदमी नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहा है गाड़ी।
कुछ लोगों को जो देशवासी बाहर हैं उनको इकट्ठा करके जय जयकार के नारे लगा लेने से कोई रिलेशन बनता नहीं है। आपने अमेरिका से संबंध बनाने की कोशिश की, आपका रशिया से संबंध खराब हो गया।
आंकड़ों और तथ्यों की रोशनी में कैसे दिखते हैं दावे?
ये नहीं कह सकते कि जो GDP ग्रोथ तो घटी है इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, पुरानी परिस्थिति थी वो भी आगे आई है।
पड़ताल करती विशेष रिपोर्टें, विश्लेषण और पूरी जानकारी BBC हिंदी रेडियो और bbchindi.com पर 22 मई से।
तीन साल पहले 26 मई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड के कई हिस्सों में बच्चा चोरी की अफवाह में 7 लोगों की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। जमशेदपुर से लगे शोभापुर गांव में आज भी खौफ छाया हुआ है। उन्मादी भीड़ ने इस गांव पर धावा बोलकर 4 लोगों की हत्या कर दी थी। सुनिए शोभापुर से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
बच्चा चोर होने के अफवाह में 18 मई को 4 लोगों की पीट पीट कर हत्या के बाद शोभापुर गांव में आज भी दहशत का आलम है। लोग हर सुबह इस उम्मीद से जगते हैं कि काश आज का दिन ठीक निकल जाए। उनकी हर रात खौफ में गुजरती है कि कहीं फिर से कोई हिंसक भीड़ उन पर हमला न बोल दे। उन्मादी भीड़ मुर्तुजा अंसारी के घर में छिपे कथित बच्चा चोरों को पकड़ने आई थी। भीड़ ने उनके घर पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। मुर्तुजा के भाई मोहम्मद फिरोज ने BBC को बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। फिरोज ने बताया।
6 बजे और 7 बजे के बीच पुलिस को भी फोन किया गया था, तो पुलिस पहुंचा फोर्स लेके। पुलिस के साथ भी बहुत माने बदसुलूकी हुआ। उसके बाद पूरे लोग घर के अंदर घुसे। घुसने के बाद खिलौना का सामान था, कम से कम दोनों भाई का 3.5-4 लाख का आइटम था प्लास्टिक का, उसको सब आग में जला दिए बाहर। और जलाने के बाद जितना सके ढो करके ले गए, गोदरेज तोड़े।
भीड़ ने आबिदा खातून के घर पर भी हमला किया था।
हम लोग नमाज पढ़ के हम उठे और उसी टाइम हमला किया उन लोग आग करके, और सामान पत्र सब छिती बिती कर दिया।
बहुत गंदा
गंदा गंदा गाली गलौज सब हुआ, धक्का मुक्का भी हुआ, आग भी सब जला दिया। वही से छोटा छोटा बच्चा है हम लोग का, खाने पीने का कुछ नहीं है, उन लोग का सब खत्म हो गया।
एडीजी ऑपरेशन आर के मल्लिक ने बीबीसी को बताया कि इस घटना के बाद शोभापुर गांव में पुलिस पिकेट बनाकर जवानों की तैनाती कर दी गई है। जब मैंने उनसे यह पूछा कि क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है, एडीजी ने कहा कि पुलिस की पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना है।
और हलीम के सारों के घर मतलब किया, तो बट वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ पिकेट इन दैट विलेज जो मुर्तजा के गांव और शोभापुर में, ताकि वहां से दिक्कत नहीं हो।
बहरहाल इस घटना के 3 दिन बाद भी शोभापुर गांव में खौफ है। बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर झारखंड में पिछले 18 दिनों में 10 लोगों की हत्या की जा चुकी है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों की सूचना देने के लिए कुछ फोन नंबर जारी किए हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। इस बीच कल जमशेदपुर में इस घटना के विरोध में बंद करा रही भीड़ के हिंसक होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद वहां निषेधाज्ञा लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर भीड़ द्वारा मारे गए शेख नईम, सज्जाद, शेख हलीम और सिराज खां के शवों को कड़ी सुरक्षा में पोस्टमार्टम कराने के बाद कल देर शाम हल्दी पोखर गाँव में दफना दिया गया। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए जमशेदपुर में।
आज आईपीएल 10 का फाइनल है, तो जान लेते हैं किस टीम का पलड़ा भारी है खेल की खबरों में।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आखिरकार आईपीएल 10 के फाइनल की घड़ी आ ही गई, जो आज हैदराबाद में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स के कप्तान स्टीव स्मिथ 14 मैचों में 2 अर्धशतक की मदद से 421 रन बना चुके हैं। इसके अलावा उनके गेंदबाज जयदेव उनादकट 11 मैचों में 22 विकेट झटक चुके हैं। अजिंक्य रहाणे भी पहले क्वालिफायर में 56 रन बनाकर फॉर्म में हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी उसी मैच में 5 छक्कों की मदद से नाबाद 40 रन ठोक कर अपने ऊपर उठते सवालों के जवाब दे दिए हैं। मुंबई इंडियंस की ताकत उसके गेंदबाज हैं। मिचेल मैकलंगन 14 मैचों में 19 और जसप्रीत बुमराह 15 मैचों में 18 विकेट झटक चुके हैं, तो क्वालिफायर मुकाबले में करण शर्मा ने केवल 16 रन पर 4 विकेट लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स की कमर ही तोड़ दी थी। पार्थिव पटेल, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या किसी भी परिस्थिति में रन बनाने की क्षमता रखते हैं, तो देखना है फाइनल किसके हाथ लगता है। उधर चीन के शंघाई शहर में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय कंपाउंड टीम ने पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारत ने कोलंबिया को 226-221 के बेहद नजदीकी अंतर से मात दी। लेकिन टेनिस के कोर्ट पर भारत की सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार कजाकिस्तान की यारोस्लावा शेविदोवा के साथ मिलकर खेलते हुए इटालियन ओपन के महिला युगल वर्ग के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई। उन्हें दूसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस और चीन ताइपे की चान युंग जान की जोड़ी ने 6-3-7-6 से मात दी। उनके अलावा भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार उरुग्वे के पाब्लो क्यूवास भी पुरुष युगल वर्ग में हार कर बाहर हो गए। उन्हें चौथी वरीयता हासिल फ्रांस के निकोलस माहूत और पियरे हर्बर्ट की जोड़ी ने 7-6-6-7-12-10 से मात दी।
हम आप पहुंचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन विदा लेने के पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पद के लिए दोबारा चुने जाने के बाद कहा है कि ईरान दुनिया से बेहतर संपर्क बनाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब दौरे के पहले दिन दोनों देशों ने $350 अरब के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने 2 साल के अंतराल में ही अमेरिका के 18 से 20 जासूसों को या तो मार दिया या गिरफ्तार कर लिया, जिससे चीन में अमेरिकी जासूसी कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ। ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमेर ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार की जाँच को रोक देने के लिए कहा है। वेनेजुएला में हजारों विपक्षी कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के नेशनल असेंबली की शक्तियां छीनने के प्रयास के 50वें दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला तिलकराज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।